नमस्कार भारत, तारीख 13 फरवरी दिन शनिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों के लिए आज पड़ेंगे वोट। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष गिरफ्तार, वाम दलों ने पुलिस कार्रवाई की तुलना इमरजेंसी से की, सीताराम येचुरी बोले।
पुलिस को यूनिवर्सिटी में अंदर जाने के लिए बिना वाइस चांसलर की इजाजत के वो नहीं जा सकता। अपनी मनमानी पे थोड़ी ना गिरफ्तारी हो सकती है, अभी तक फांसीवादी व्यवस्था आया नहीं भाई हिंदुस्तान में।
मुकाबला चाहे टीवी से हो या फिर किसी और से, लेकिन भाई रेडियो का जवाब नहीं।
कुछ भी करते हुए आप रेडियो सुन सकते हैं, वो प्रोग्राम सबसे अच्छा होता है जो आप न सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि उसे देख भी सकते हैं, तस्वीर से बन जाती है।
साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अजय शर्मा से। भारत के 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की 3-3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, देवबंद और फैजाबाद की बीकापुर सीट पर, तो कर्नाटक की देवादुर्गा, बीदर और देहेबल सीटों पर मतदान होगा। इनके अलावा पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, त्रिपुरा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में एक एक सीट पर चुनाव होना है। सीरिया में नरमपंथी विद्रोही गुटों ने कहा है कि महाशक्तियों की ओर से एक हफ्ते में सीरिया में संघर्ष विराम की कोशिशों को लेकर उन्हें काफ़ी शक हैं। कई चरमपंथी गुटों ने बीबीसी को बताया कि वो संघर्ष नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है कि रूस सीरिया के समर्थन में चला रहा अपना बमबारी अभियान रोकेगा। महाशक्तियों के बीच सीरिया संकट को लेकर हुए समझौते के कुछ देर बाद सीरिया के राष्ट्रपति असद ने कहा था कि जब तक वो पूरे सीरिया को कब्जे में नहीं ले लेते, लड़ाई जारी रखेंगे। फ्रांसीसी समाचार एजेंसी AFP से बातचीत में उन्होंने कहा, हमने इस संकट की शुरुआत से ही समझौतों और राजनीतिक कार्रवाई में पूरा यकीन जताया है। हालांकि अगर हम समझौता करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चरमपंथ से लड़ाई बंद कर देंगे। सीरिया में दोनों रास्ते एक साथ खुले हुए हैं, पहला समझौतों के जरिए और दूसरा चरमपंथ से लड़ाई के साथ, और दोनों ही रास्ते एक दूसरे से अलग हैं। ये थे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन के बताए बदलावों को मंजूर कर लेता है तो वो बेशक अपने देश को EU का सदस्य बने रहने के लिए सिफारिश करेंगे। कैमरन ने जर्मनी के हैम्बर्ग में ये बात कही। वहीं जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि उन्हें इस मामले में किसी नतीजे तक पहुँचने का यकीन है, पर उन्होंने चेतावनी दी कि दोनों पक्षों को झुकना पड़ेगा। रोमन कैथोलिक चर्च और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुखों ने क्यूबा में पहली बार ऐतिहासिक मुलाकात की है। पश्चिमी और पूर्वी ईसाइयत के बीच मतभेदों के करीब 1000 साल बाद ये दोनों प्रमुखों की पहली मुलाकात है। पोप फ्रांसिस ने कहा कि दोनों की खुलकर बात हुई है, जबकि रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के मुखिया किरिल ने कहा कि वो दुनिया भर में ईसाइयत को बचाने के लिए काम करेंगे। किरिल राष्ट्रपति पुतिन के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने उत्तरी माली में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर पर चरमपंथी हमले की निंदा की है। इस हमले में 5 शांति सैनिक मारे गए थे। हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी एक वैन कार्यालय की इमारत में घुसा दी थी और फिर मशीन गनों और मोर्टार से हमला किया था। माली के जिहादी संगठन अंसार दिने ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। गोवा सरकार ने भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की तादाद कम करने और उसे हानिकारक पक्षी की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव दिया है। मोरों को वन्यजीव कानून के तहत संरक्षित पक्षी की श्रेणी में रखा गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत भारत से। 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की 3-3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, त्रिपुरा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में एक एक सीट पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, देवबंद और बीकापुर विधानसभा क्षेत्रों और कर्नाटक के देवादुर्गा, बीदर और हेबल में नए प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए मतदान होगा। इन चुनावों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी और चर्चा उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इन उपचुनावों को आने वाले चुनाव के ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है। जिन सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं वहां सभी सीटें अब तक समाजवादी पार्टी के पास थीं। बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य मुजफ्फरनगर में हैं और इस चुनाव पर नजर रखे हुई हैं। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने दिव्या आर्या से बात की और पूछा कुछ देर बाद वहां शुरू होने वाले मतदान को लेकर किस तरह का माहौल है।
चुनाव को लेकर काफी उत्साह है, काफी सारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं और जो झंडे लगे थे वो तो खैर उतार दिए गए आचार संहिता के मुताबिक। आखिरी दिन तक रैली निकल रही थी, हम यहीं पर थे गुरुवार को और काफी अच्छी तादाद में उस दिन भी रैलियां निकली। उस केंद्रीय मंत्री यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजीव बालियान यहाँ पर थे। आखिरी दम तक ऐसा लग रहा था कि पार्टी अपना पूरा दमखम लगाए हुए थी प्रचार में।
माहौल तो उत्साह वाला है, लेकिन मुद्दे क्या हैं? अगर मुद्दों की मैं आपसे बात करूं और लोगों का मूड किस तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है?
मुद्दे यहाँ पर जो लोगों से जुड़े हैं, जिनको हम आम तौर पर बिजली पानी या किसानों से जुड़े खास तौर पर मुद्दे, वो मुद्दे दरअसल सामने नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा धर्म और जाति के आधार पर एक विभाजन करने की कोशिश की गई है। जो रैलियां निकाली गई हैं उसमें काफी भड़काऊ भाषण दिए गए हैं और जितनी पार्टियां बड़ी पार्टियां चुनाव में हैं, बसपा तो नहीं है, लेकिन सपा कांग्रेस और भाजपा तीनों ने ही एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं भड़काऊ भाषण देने के। एक रैली में ये तक कहा गया है कि पठानकोट के हमले की जो साजिश है वो देवबंद में रची गई थी, इस तरह के बयान तक दिए गए हैं और लव जिहाद से जुड़ी बहुत बात की गई है। बार बार मुसलमान लड़कों से हिंदू युवतियों को खतरे की बात बहुत की गई है। बहुत सारे होर्डिंग्स पर भी बेटियों की सुरक्षा, बहुओं की सुरक्षा को लेकर बातें लिखी हुई हैं। तो बहुत ही भड़काऊ बातों को भाषण के केंद्र में रखा गया है।
ये वही इलाका है जहां 2013 में सांप्रदायिक तनाव हुआ था, दंगे हुए थे, तो क्या माहौल आज भी लगभग उसी स्थिति में है? जबकि 2013 से अभी चीजें तो काफी बदल गई है उत्तर प्रदेश में।
माहौल उतना टेंस तो कतई नहीं है, लेकिन लोग इतने जागरूक हैं, आप शहर में बात करें लोगों से तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि उस तरह का जो एक माहौल भड़का था वो अभी उपचुनाव से पहले तो उस तरह का रंग नहीं ले पाया, पर उन्हें लगता है कि वैसा रंग 2017 के जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है उससे पहले जरूर वो रंग आ सकता है। दूसरी तरफ एक लोगों के मन में ये बात भी है कि क्योंकि कम से कम 2017 तक राज्य सरकार में अभी सपा है, तो इसलिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि इस वक्त किस पार्टी की तरफ लहर आखिरकार निकलेगी।
भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, जिसके उत्तर प्रदेश में सरकार भी है, दोनों के लिए ये अग्नि परीक्षा की तरह चुनाव माने जा रहे हैं उपचुनाव।
हाँ, कई लोग इसको ट्रेलर का नाम दे रहे हैं और बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में लाने के पीछे ये मकसद भी लग रहा है। ये भी आप ध्यान में रखें कि 2013 में जो दंगे भड़के थे उसमें जिन नेताओं पर आरोप लगे थे दंगे भड़काने के, वो भी इस चुनाव प्रचार में बहुत बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया है। तो ये लोगों को क्या संकेत दे रहा होगा ये सोचने वाली बात है। तो चाहे माहौल बहुत बदला हो उसके बाद से, लेकिन जमीनी स्तर पर किस नेता को किस कौन सी पार्टी कितनी तरजीह दे रही है, कितनी जगह दे रही है और वो कौन सा मैसेज लोगों तक लेके जा रहा है, ये जरूर तय करेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को तरजीह मिलती है और किस तरह से चुनाव की तरफ बिल्डअप किया जाता है।
मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश के चुनाव का हाल बयां कर रही थी हमारी सहयोगी दिव्या आर्य। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वाम दलों ने गिरफ्तारी का विरोध किया है। बीते मंगलवार को अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर जेएनयू परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए गए थे। जेएनयू छात्र संघ ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कार्यक्रम में नारे लगाने से खुद को अलग किया था। वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल कहा था अगर कोई भारत में रहते हुए देश की एकता और अखंडता पर सवाल खड़ा करने की कोशिश करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने आरोपी छात्रों को पकड़ने के लिए विश्वविद्यालय में अभियान चला रखा है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने पुलिस की कार्रवाई की तुलना इमरजेंसी से की है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने सीताराम येचुरी से बात की और पूछा कि आखिर वो जेएनयू में हुई कार्रवाई की तुलना आपातकाल से क्यों कर रहे हैं।
अब ऐसी एक घटना अगर जो हुई, उस घटने के आधार पर जिसके बारे में भी आपके पास कंप्लेंट है उसके अंदर जांच करके जो जिसको गिरफ्तार करना करिए, लेकिन इसको बहाना बना के आप पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ी पुलिस फोर्स बड़ी तादाद में भेज देते हो और हॉस्टलों के अंदर कॉम्बिंग होता है बाकायदा, और छात्र संघ के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिए, आप पुलिस कस्टडी में लगा दिया जब उनका कुछ लेना देना इसके साथ नहीं था, और कई सारे छात्र संगठन इसका खंडन भी कर रहे थे, विरोध भी किए थे। अब ऐसे परिस्थिति में ये हमें लग रहा है कि नए वाइस चांसलर साहब आए, उस नए वाइस चांसलर साहब को अपॉइंट नियुक्त किया है यही मोदी साहब की सरकार ने, और उनका पूरा का पूरा रुझान जहाँ तक उच्चतम शिक्षा के बारे में है वो तो सभी जानते हैं। जेएनयू के ऊपर उनको कोई बहाना या रास्ता अभी तक नहीं मिला। अब ये जो एक इसको एक बहाना बनाकर ये इतनी बड़ी तादाद में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और इस तरीके से यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में पुलिस जाकर कॉम्बिंग ऑपरेशन करके गिरफ्तार करें, ये सिर्फ इमरजेंसी में देखा, और इसलिए हमने कहा जब हम थे छात्र वहां पे, और इसलिए हमारी तुलना है कि ये इमरजेंसी के साथ, यानी एक ठीक अधिनायकवाद की सरकार अब ये मोदी साहब की इस प्रकार से उभर कर आ रही, जो उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ ये सुलूक वो जो है किए जा रहे हैं।
इस मामले में गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्र के खिलाफ जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बीजेपी सांसद महेश गिरी कह रहे हैं कि पुलिस को अपनी कार्रवाई करने का हक है।
बिल्कुल, लेकिन वही पूछे आप, FIR जब दर्ज करवा रहे थे FIR के अंदर कोई छात्रों का नाम क्यों नहीं है? FIR होता है कि आपकी रिपोर्ट आप लिखवाते हो किसी गुनहगार के बारे में या किसके बारे में आप आरोप लगा रहे हो कि ये गुनहगार है। अब आरोपियों का नाम ही नहीं है तो FIR, और उसी को एक बहाना बनाकर इस तरीके की हस्तक्षेप करें यूनिवर्सिटी के अंदर, दखल करें आप, ये कहां से ये उचित है?
तो येचुरी साहब, इस मामले में अब आप लोग आगे क्या कोई कदम उठाने जा रहे हैं या फिर आपकी क्या मांग है?
देखिए, स्पष्ट रूप से यही है कि पहले पुलिस हटाइए वहाँ पे, जो निर्दोष छात्रों को जो गिरफ्तार किया उनको रिहा करिए आप, या बताइए उनके ऊपर क्या है चार्ज, क्या है सबूत आपके ऊपर कि आप अगर पुलिस जांच की तो सबूत के आधार पर बताइए क्या चार्ज है इसलिए इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। अपनी मनमानी पे थोड़ी ना गिरफ्तारी हो सकती है, अभी तक फांसीवादी व्यवस्था आया नहीं भाई हिंदुस्तान में। इसके खिलाफ हम राजनीतिक लामबंधन करेंगे। माननीय महामहिम हमारे देश के राष्ट्रपति यूनिवर्सिटी के विजिटर हैं, उनसे कहेंगे हस्तक्षेप करने के लिए। हिंदुस्तान के अंदर पुलिस को यूनिवर्सिटी में अंदर जाने के लिए बिना वाइस चांसलर की इजाजत के वो नहीं जा सकता, और यहाँ पर अब यही हमें सूचना मिल रही है कि वाइस चांसलर साहब खुद आमंत्रण किए पुलिस को। अब इस तरीके की बात अगर हुई तो उनकी भी स्पष्टीकरण जरूरत है। ये सब मांगेंगे राजनीतिक स्तर पर, और एक हफ्ते में पार्लियामेंट भी आ रही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्थापना पार्लियामेंट के एक विधेयक के द्वारा हुआ है, तो पार्लियामेंट का पूरा अधिकार है वहाँ पर पूछने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे।
ये थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, जो कि JNU में हुई कार्रवाई की तुलना आपातकाल से कर रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि आज BBC इंडिया बोल में क्या है चर्चा का विषय।
BBC इंडिया बोल, कौन है देशद्रोही, क्या परिभाषा है देशद्रोह की, बोलने की आजादी क्या याकूब मेमन और अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगाने का हक देती है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद उठे ऐसे कई सवाल, छात्र समुदाय दो धड़ों में बटा, पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जाहिर कीजिए BBC इंडिया बोल में। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 13 फरवरी शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811027001 पर।
BBC इंडिया बोल।
तो इस कार्यक्रम में तो शाम को आपसे मुलाकात होगी, लेकिन अब फिलहाल कार्यक्रम में अखबारों का जिक्र करते हैं। अजय शर्मा, सारे अखबार पढ़ चुके हैं, बिखरे पड़े हैं अखबार, क्या कह रहे हैं अखबार?
ज्यादातर
JNU
जी, बिल्कुल, ज्यादातर अखबारों में JNU प्रमुख खबर है, और जैसे दैनिक जागरण मेरे सामने है और इसमें JNU छात्र संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी की खबर है, और साथ ही ये भी जिक्र है, अखबार लिखता है कि छात्र संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी से पहले गृह मंत्री ने इस दिल्ली पुलिस आयुक्त से बातचीत भी की थी, और JNU में 9 फरवरी को अफजल गुरु की बरसी पर छात्रों ने हर घर से अफजल के पैदा होने और भारत के टुकड़े करने जैसे नारे लगाए थे। इसके अलावा जनसत्ता है, वो लिख रहा है कि SAR गिलानी पर भी राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व लेक्चरर SAR गिलानी हैं,
और ये वही हैं जो कि संसद मामले में एक इनके ऊपर मुकदमा बाकायदा चला था, जिसमें कि अदालत ने बाद में इनको दोष मुक्त करा दिया था।
और ये एक कार्यक्रम जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हुआ था, जिसमें ये आरोप लगे थे इनके ऊपर। इसके अलावा दैनिक भास्कर है, दैनिक भास्कर ने लिखा है कि अब मजिस्ट्रेट के हवाले से लिखा है कि लगता है कि इन छात्रों को भारत में होने का दुख है, आखिर किस तरह की आज़ादी चाहिए इन्हें, जब कन्हैया लाल से जो इंटरोगेशन हुआ उस दौरान जो है ये मजिस्ट्रेट ने उनसे बात की। और अमर उजाला ने भी ये लिखा है, और साथ में एक बॉक्स आइटम छापा है कि JNU छात्रों के समर्थन में पाक आतंकी सरगना हाफिज सईद नाम से हेडिंग है और उसके अंदर लिखा है कि ये मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने ट्विटर पर जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वालों के पक्ष में मदद की अपील की है, एक खबर ये है। और इसके अलावा जो नवभारत टाइम्स में एक खबर है कि सोनिया और राहुल को ये नेशनल हेराल्ड मामले में उनकी पेशी से जो है कोर्ट ने छूट दे दी है, हालांकि मुकदमा चलता रहेगा, उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है उनको।
और एक खबर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जनसत्ता में छपा हुआ है कि बिहार भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष की गोली मारकर जो कल हत्या की गई थी, ये सेकंड लीड खबर जनसत्ता की है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय शर्मा अखबारों की सुर्खियां बताने के लिए।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
एक दौर में खड़खड़ की आवाज के साथ सुनाई देने वाले रेडियो आज एक ऐप बनकर हमारे मोबाइल में समा गए हैं। 21वीं शताब्दी रेडियो में बदलाव लेकर आई। इन बदलावों के बावजूद भी रेडियो से हमारा रिश्ता और मजबूत होता चला गया। रेडियो की कशिश और हमारे जीवन में रेडियो की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, आज विश्व रेडियो दिवस के मौके पर सुनिए विशेष रिपोर्ट श्वेता सिंह से।
ये सब सुनकर कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि प्रसारण रुक गया है?
आप सुन रहे हैं विविध भारती
और अब अचानक ये आवाजें। तो इससे पहले कि आपके जहन में और सवाल आए, मैं आपको बता दूं, ना ही कुछ रुका है और ना ही रुकेगा, बस अपने नए रूप में जुड़ा है हमसे रेडियो।
ये है बीबीसी और समय है आजकल का।
मैं महेश भट्ट बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सर्विस।
आज है विश्व रेडियो दिवस।
नमस्कार, ओंकार नाथ श्रीवास्तव की ओर से।
रेडियो के शुरुआत के दिनों में हम समाचार, वे जानकारी से भरे कार्यक्रम और शास्त्रीय संगीत सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे रेडियो पर हल्के फुल्के संगीत का भी मजा हमें मिलने लगा।
जाने के सजा तू किया तेरी मीठी बात ने, तेरा मेरा प्यार हुआ पहली मुलाकात में।
रेडियो को सुनने के लिए हमें घर की छत पर जालीनुमा एंटीना लगाना होता था। लोगों तक टीवी की पहुँच होने के बाद भी रेडियो की जगह कोई और साधन नहीं ले सका। कैसे, इस पर रेडियो की मशहूर आवाज अमीन सयानी कहते हैं।
देखिए, रेडियो सबसे सस्ता, सुनने में सबसे आसान, कुछ भी करते हुए आप रेडियो सुन सकते हैं। यानी आप नहा रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो या पिकनिक पे जा रहे हो, साइकिल चला रहे हो, कुछ भी करते हुए आप रेडियो सुन सकते हैं। वो प्रोग्राम सबसे अच्छा होता है जो आप न सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि उसे देख भी सकते हैं। यानी हम जो कुछ बात करते हैं, सुनने वालों के दिल में एक चित्र सा बन जाता है, एक तस्वीर से बन जाती है। यानी ये भी होता है कि इतना अनाउंसर जो है वो इतना घुल मिल जाता है सुनने वालों से कि सुनने वाला सोचता है कि अगर मैंने हाथ बढ़ाया तो रेडियो की तरफ तो मैं बोलने वाले को, अनाउंसर को छू लूंगा। इतनी कशिश है रेडियो में।
रेडियो की इन आवाजों से श्रोताओं की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो गई। यूपी के प्रमोद श्रीवास्तव बताते हैं कि कैसे रेडियो ने उन्हें जीने की एक नई उम्मीद दी।
हम रेडियो जो है 1989 से सुन रहे हैं। 1992 में हम बीमार पड़ गए, वो हमारे जो है दिमागी बुखार हो गया था, तो इलाज कराते कराते हम पड़ गए जो है झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में, तो उसकी दवाओं के रिएक्शन से हमारे जो है पैरों पर असर पड़ गया जो है, और हम विकलांगता का शिकार हो गए। दो साल हम तो बिस्तर पर जो है लेटे रहे, तो वो क्षण था लेटे लेटे कि हम अवसाद का शिकार हो गए, तो उस समय डॉक्टर के रूप में रेडियो ने हमारी मदद की। लेटे लेटे हम आकाशवाणी, बीबीसी और हर जगह जो है हम पत्र लिखते थे। एक समस्या और हो गई थी कि रात को नींद नहीं पड़ती थी, तो हम रेडियो बजाते बजाते उसका संगीत सुनते सुनते ऐसे नींद आ जाती थी कि पता ही नहीं चलता कि हम कब सो गए, और रेडियो बजता रहता था।
जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए।
उस दौर में महिलाएं अक्सर घर का काम करते हुए रेडियो सुनती थीं। राजस्थान की उमा याद करती हैं कैसे रेडियो सुनना उनकी जिंदगी में बदलाव लेकर आया।
ये बात है 1989 की और उस समय हम बहुत पूरा पिछड़े एरिया में रहते थे, यानी गांव में। हमारे नाना जी ने मुझे एक रेडियो 88 में उपहार स्वरूप दिया था, तो उस समय मैं सुनती रही। फिर हमने बस ऐसे छोटी सी दो लाइनें लिख दी थी, देखो सुबह आई है एक नई रोशनी लाई है, देखो उषा की लाली को एक सुंदर दुल्हन लगती है, जो मैंने यूं ही लिख दी लखनऊ आकाशवाणी केंद्र पे। अचानक उस दिन मैंने चाय बनाते हुए रेडियो खोला और उस समय मेरा ही नाम बोला जा रहा था और वो मेरी ही पंक्तियां बोली जा रही थी। उस समय से और आज के समय तक मुझे वो आज भी प्रेरणा देती है वो बात, और तब से मैं कविताएं, कहानी और गजल लिखने लगी।
रेडियो सुनने वाले हर श्रोता की ये चाहत होती है कि वो अपने पसंदीदा रेडियो प्रस्तुतकर्ता से मिले।
नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूँ।
तो हमने कोशिश की रेडियो दिवस के मौके पर एक ऐसे ही श्रोता को अमीन साहब से आवाज के जरिए मिलवाने की। सुनिए, जब प्रमोद अमीन सायानी को याद कर रहे थे तो कैसे अमीन साहब की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए।
मैडम, हमने 1989 से शिवा का गीत माला सुनना शुरू किया था।
तो आप प्रमोद जी, आप यही रुकिए, अब आपको मैं कुछ सुनवा रही हूँ।
मिस्टर प्रमोद साहब, अमीन सायानी बोल रहा हूँ, आप ही का दोस्त, रेडियो दोस्त। तो भाई, अब आप जरा दिल को संभालिए और अमीन सायानी के साथ बात कीजिए।
सर, ऐसा है कि देखिए, लोगों का भगवान जो होता है ऊपर रहता है, लेकिन श्रोताओं के भगवान आप हैं, अमीन सायानी साहब आप हैं हम लोगों के भगवान।
अरे, मैं तो सीधा साधा रेडियो ब्रॉडकास्टर हूँ भाई, मेरे जो श्रोता हैं वो मेरे लिए भाई या बहन की तरह है। जैसे मैं बहनों और भाइयों कहता हूँ, उसी तरह मैं समझता हूँ अपने श्रोताओं को। मैं कोई भगवान नहीं, मैं सीधा साधा आप ही के घर का वासी, इसलिए मुझे सिर्फ अमीन भाई कह के पुकारिए।
आप स्टार, इन्हें मेगा स्टार हैं, और रेडियो की तरंगों के द्वारा मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप मेरे, हम बिल्कुल आपके करीब हैं और हमारे सर पर हाथ रखकर आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं।
बिल्कुल आशीर्वाद आपको, खुश रहिए, धूम मचाइए, रेडियो सुनते रहिए। थैंक यू।
21वीं शताब्दी के आते आते रेडियो अपने में कुछ बदलाव लेकर आया, FM रेडियो के रूप में। रेडियो में आए इन बदलाव पर बहुत सारे FM रेडियो स्टेशंस के साथ काम कर चुकी RJ सिमरन का कहना है।
देखिए, रेडियो में जो चेंजेस हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। मुझे इसलिए लग रहा है कि वो चीज खो गई है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बच्चे हुआ करते थे, हम कहते हैं हम किस तरह खेल खेल कर बड़े हुए, बट ऐसा नहीं है कि आईपैड वाली जनरेशन इज एनी लेस स्मार्टर। वो भी स्मार्ट है, हम अपनी जगह स्मार्ट थे, बस ये इस जल्दबाजी में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं उनके फाउंडेशन वीक हो रहे हैं। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो रेडियो को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं।
बदलते हुए इस दौर में क्या रेडियो अपनी पहचान यूं ही बरकरार रख पाएगा?
200% जिंदा रहेगा। जब तक इंसान है, जब तक आवाजें हैं, तब तक रेडियो है। आप बताइए, एक ह्यूमन वॉइस का क्या ऑल्टरनेटिव है आपके पास?
श्वेता सिंह, BBC दिल्ली।
विश्व रेडियो दिवस पर ये थी श्वेता सिंह की विशेष रिपोर्ट। आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। और अब आपको बताते हैं कि आज किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में मेक इन इंडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ मेक इन इंडिया वीक की शुरुआत होगी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होने वाले इस कार्यक्रम में स्वीडन और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के अलावा कई विदेशी अधिकारी मौजूद होंगे। मोदी की इन नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत भी तय है। वर्ली में मेक इन इंडिया वीक की औपचारिक शुरुआत होगी, जिसमें भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग ठिकाना बनाने पर चर्चा होगी। मोदी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे। भारत में स्वीडिश निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टेफान लोवेन शनिवार को भारत पहुंच रहे हैं। उनके साथ स्वीडन के कारोबारी और अधिकारी भी आ रहे हैं, जो मुंबई में मेक इन इंडिया वीक में हिस्सा लेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री 2 दिन भारत में रहेंगे। राजस्थान के उदयपुर शहर में आज वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। 2 दिन चलने वाले इस समारोह में 12 देशों के 100 से ज्यादा कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। इस समारोह को भारत और स्पेन के 60 साल के कूटनीतिक रिश्तों के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। फेस्टिवल के दौरान स्पेनिश फ्लेमेंको संगीत और नृत्य भी पेश किया जाएगा।
अब आपको बताते हैं हफ्ते भर के दौरान खेल की दुनिया में क्या कुछ हुआ। सुनिए आदेश कुमार गुप्त से खेल और खिलाड़ी में।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। आखिरकार भारत ने पुणे में मिली हार को पीछे छोड़ते हुए कल रांची में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 69 रनों से हरा दिया। श्रीलंका के सामने जीत के लिए 197 रनों जैसा बड़ा लक्ष्य था, लेकिन वो निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 127 रन ही बना सकी। श्रीलंकाई टीम तभी मुश्किल में फंस गई जब उसके शुरुआती 3 विकेट केवल 16 रन पर गिर गए। आशीष नेहरा ने सलामी बल्लेबाज धनुष्का गुनाथिला का और सिकुग्गे प्रसन्ना को चलता किया, तो आर अश्विन ने दूसरे सलामी बल्लेबाज अनुभवी तिलकरत्न दिलशान को कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच कराया।
बहुत ही बेहतरीन शुरुआत आशीष नेहरा के द्वारा और भारतीय टीम के द्वारा। तीसरा झटका लगता हुआ श्रीलंकाई टीम को गुनाथिल के आउट हुए 2 रन बनाकर 16-3।
इसके बाद कप्तान दिनेश चांदीबल ने 31, कपूगेदारा ने 32, मिलिंद श्रीवर्धना ने 28 और दसुन शनाका ने 27 रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की। आर अश्विन ने 14 रन देकर 3, आशीष नेहरा ने 26 रन देकर 2 और जसप्रीत बुमराह ने 17 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इससे पहले भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 196 रन बनाए। शिखर धवन ने केवल 25 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्के जमाते हुए 51 रन बनाए। रोहित शर्मा ने भी 43 रनों की पारी खेली, लेकिन श्रीलंका के थिसारा परेरा ने हैट्रिक जमाई।
2 गेंदों पर 2 विकेट, पहले हार्दिक पांड्या और उसके बाद सुरेश रायना, तो हैट्रिक पर है इस समय थिसेरा परेरा। युवराज सिंह, हवा में गेंद है, संपर्क देखना होगा। जी हैट्रिक, हैट्रिक बन गया है यहां पर थिसेरा परेरा का।
उन्होंने 33 रन देकर 3 विकेट झटके। उधर कल से मेजबान न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू हुई। इसका पहला टेस्ट मैच वेलिंगटन में खेला जा रहा है, जहां कल पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जिसके बाद उसके गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की पहली पारी केवल 183 रनों पर समेट दी। न्यूजीलैंड के मार्क क्रिक 41 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने 42 रन देकर 4 और पीटर सिडल ने 37 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कल स्टंप के समय तक 3 विकेट खोकर 147 रन बना लिए थे। और अब बात दक्षिण एशियाई खेलों की। इन दिनों भारत में आयोजित किए जा रहे दक्षिण एशियाई खेलों में मेजबान भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा बना हुआ है। तीरंदाजी में तो भारत ने दांव पर लगे 10 के 10 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। एथलेटिक्स में भी भारत ने 15 स्वर्ण पदक जीते। महिला हॉकी में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 10-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता, तो पुरुष वर्ग के फाइनल में कल भारत का सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से था। पाकिस्तान ने अंतिम समय में गोल कर भारत को 1-0 से हराते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत 146 स्वर्ण, 80 रजत और 23 कांस्य पदक सहित 249 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर है। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
आदेश कुमार गुप्त खेल और खिलाड़ी हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पेश कर रहे थे, और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा ले, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। भारत के 8 राज्यों की 12 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की 3-3 विधानसभा सीटें शामिल हैं। सीरिया में नरमपंथी विद्रोही गुटों ने एक हफ्ते में सीरिया में संघर्ष विराम की कोशिशों पर शक जाहिर किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन के बताए बदलावों को मंजूर कर लेता है, तो वो अपने देश को ईयू का सदस्य बने रहने की सिफारिश करेंगे। रोमन कैथोलिक चर्च और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुखों ने क्यूबा में पहली बार ऐतिहासिक मुलाकात की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने उत्तरी माली में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर पर चरमपंथी हमले की निंदा की है। हमले में 5 शांति सैनिक मारे गए हैं। गोवा सरकार ने भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की तादाद कम करने और उसे हानिकारक पक्षी की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव दिया है। कैलिफोर्निया में वैज्ञानिकों ने स्मार्टफोनों के लिए एक ऐसी ऐप तैयार की है जिससे भूकंपों की निगरानी की जा सकती है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के आज के इस अंक में बस इतना ही। एक घंटे बाद विश्व भारती कार्यक्रम लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान, मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।